Sahana Vavatu Sahana Vunattu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Guru Brahma Guru Vishnu Gurur Devo Maheshwarah Gurudev Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Satgurum Brahma Vidvaram Vasudeva Sutam Devam Kamsa Chanura Mardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Gurum Krishnam Vande Jagat Gurum.
भगवान ने कहा ऐसा ते अविता सांख्य बुद्धि योगेन तुनाम शुरू कि आपको मैंने आत्मज्ञान दे दिया, सांख्य योग मैंने बता दिया, अब आप बुद्धि योग मतलब कर्म योग के बारे में सुनो। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसी, अगर आप इस बुद्धि को पकड़ लो, इस कर्म योग बुद्धि को पकड़ लो और उसके हिसाब से अपना जीवन यापन करो तो क्या होगा, कर्म बंधन प्रहास्यसी, कर्म बंधन खत्म हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि भई ये कर्म योग क्या चीज है, इसमें क्या लाभ क्या है, तो कहते हैं कि न अभिक्रम नाशो अस्ति, इसका अभिक्रम का नाश नहीं है। अभिक्रम का नाश मतलब शुरू कर दो, खत्म हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नो लॉस ऑफ एफर्ट, काम पूरा हो या ना हो। अच्छा एक चीज और बता दे, काम अगर गलत भी हो कर्मयोग के अंदर फिर भी आपको 100% मार्क्स। कर्मयोग में काम शुरू किया आपने, अच्छा हुआ ठीक है, एक सेकेंड दो सेकेंड आपने वैक्यूम क्लीनर चलाया श्राइन में, फल मिलेगा। काम अगर गलत भी हुआ फिर भी 100% मार्क्स, क्योंकि भगवान को आपके कर्म से और आपके कर्म फल से कोई लेना देना नहीं है। भगवान को केवल लेना देना किससे है, आपके भाव से बस। कर्मयोग के अंदर आपका भाव क्या है कि मैं ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, बस भगवान को बस इतना ही लेना है। वो आपकी कैपेबिलिटी नहीं देखते हैं, कर्म फल क्या हो रहा है, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद कहते हैं प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय कहते हैं कि विपरीत फल भी नहीं होगा, जैसे दवाई के अंदर विपरीत फल हो जाता है कई बार, बोले विपरीत फल भी नहीं होगा। और क्या चाहिए आपको, देखो थोड़ा सा करोगे। फिर कहते हैं स्वल्प से धर्म से त्रायते महतो भया, इस धर्म का कौन से धर्म का, कर्मयोग धर्म जो है, कर्मयोग अगर आप करोगे स्वल्प थोड़ा सा भी किया, फिर कहते हैं क्या क्या होगा उसमें, इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान संसार भय से रक्षा किया करता है। देखो जन्म मरण से आप बच जाओगे थोड़ा सा भी अगर करो। फिर कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना, कि ये व्यवसायिक बुद्धि क्या है, अगर आपने कर्म योग को पकड़ लिया तो आपकी व्यवसायिक बुद्धि हो गई, व्यवसायिक में तो मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि हो गई, निश्चयात्मिका बुद्धि मतलब आपने कर्मयोग को ग्रहण कर लिया। अगर आपने कर्मयोग को ग्रहण कर लिया आपको, आपने ईश्वर को अपने जीवन में उतार लिया, आपकी बुद्धि अब एक शाखा बन गई, हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक हो गई, अब सिंगल पॉइंटेड आपकी बुद्धि हो गई। बहुशाखा ही अनंता से बुद्धि अव्यवसायी नाम, अव्यवसायी जिन्होंने कर्मयोग को नहीं पकड़ा, कुछ लोगों ने कर्मयोग को जीवन में पकड़ लिया, उनकी बुद्धि एक शाखा सिंगल पॉइंटेड, ईश्वर के लिए हम कर्म कर रहे हैं। और जिन्होंने कर्मयोग नहीं किया बोलो व्यवसाय अव्यवसायी है, उनकी बहुशाखा बुद्धि है, दुनिया भर के अंदर चीजों के आपके बाद कामनाएं आती रहती हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। हम लोगों ने उदाहरण देखा था कि जब हम जाते हैं मैरियनो गए, दूध ही लेना था, और जब निकलते हैं तो कार्ट फुल होती है, कितनी बहुशाखा बुद्धि आ जाती, कितनी चीजें हमारी बढ़ जाती हैं वहां पर। प्लस हम लोगों ने यह भी देखा था कि सोमवार से शुक्रवार तक हमको ऑफिस जाना रहता है, हमारी बुद्धि सवेरे एक शाखा रहती है कि हमको ऑफिस जाना है, इधर उधर नहीं जाती है। जैसे ही शुक्रवार शाम को हुआ, अब आपकी वो बुद्धि खत्म हो गई। अब आपसे लोग पूछते हैं कल क्या करोगे आप, कल का क्या प्रोग्राम है, अब बोलते पता नहीं अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ है। अनंत शाखा बुद्धि बन जाती है। तो ये अव्यवसायी नाम जो लोग हैं, जिन्होंने कर्मयोग को नहीं पकड़ा है, वो क्या कहते हैं, जिनकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हुई है, जिन्होंने कर्मयोग को नहीं पकड़ा है, ये ऐसे लोग क्या करते हैं, या इमाम पुष्पिताम वाचन प्रवदन्ति अभिपश्चित वेद बाद रतः पार्थ नान्यद अस्ति इति बादिना। जिन्होंने कर्मयोग को नहीं पकड़ा है वो क्या कहते हैं, बोलते हैं ये ऐसे कहते हैं जैसे पुष्पित वृक्षों जैसी शोभित, सुनने में रमणीय जिस वाणी से वो कहा करते हैं, वो ऐसी प्रशंसा करते हैं किसकी, वेद की। यहां पर वेद का मतलब होता है रिचुअल पोर्शन, कर्म कांड की। यहां पर वेद पर हम आत्मज्ञान की नहीं बात कर रहे हैं। तो रिचुअल जो पोर्शन है, कर्म कांड जिसको कहते हैं, उसकी वो बहुत प्रशंसा करते हैं। अरे भाई ये कर लो पुत्र हो जाएगा, ये कर लो घर बन जाएगा, ये कर लो स्वर्ग पहुंच जाओगे, ये कर लो शत्रु का विनाश करना, ये कर लो। वेद बाद्रता अस्पुष्पिता वाचन, खाली बोलते हैं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे उसकी खूब प्रशंसा करते हैं कर्म कांड की। नान्य दस्तिति बादिन, बोले और यहां कुछ नहीं है, बस यही करना है, कर्मकांड ही सब कुछ है। और उनका परम क्या है, बोले स्वर्ग। शंकराचार्य जी लिखते हैं, जो ऐसे भी कहने वाले हैं कि स्वर्ग प्राप्ति आदि फल के साधन रूप कर्मों से अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं, जो कुछ है बोले बस स्वर्ग तक है। स्वर्ग चाहते हो कर लो, ज्योतिष्ठोम हम कर लो, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। तो ये लोग कैसे हैं भाई, तो बोलते हैं कामात्मनः स्वर्ग परहा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। भाई उनकी कामना बहुत है, कामना भरी हुई है एक के बाद एक, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, बहुत कामनाएं भरी हैं। स्वर्ग परा, उनके लिए परम क्या है, स्वर्ग, हाइएस्ट गोल स्वर्ग, और कुछ नहीं चाहिए। जन्म कर्म फल प्रदान, अच्छा आप जो भी कर लो ये कर्म कांड के अंदर अल्टीमेटली फिर से जन्म लेना है। कर्म कांड के अंदर ऐसा है कि आप एक कर्म किए, आपको फल मिल गया, फल मिलने के बाद में अभी हम देखेंगे क्या फल मिलता है, कैसे मिलता है, क्या होता है, फल मिलने के बाद में फिर अब और करना चाहेंगे, और चाहिए, तो करते 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 बोलते ये आपका जन्म कर्म चलता रहेगा, आपको जन्म फिर से लेना होगा। क्रिया विशेष बहुलाम, बोले इसमें बहुत से स्टेप्स होते हैं, बहुत स्टेप्स होते हैं। हम लोगों ने देखा था ना, जैसे अमेरिका वीसा लेने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं, हम लोगों ने उस दिन पिछले दिन चर्चा की थी, बोले इनके भी बहुत से स्टेप्स होते हैं। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, ये भोग करना चाहते हैं, और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब लॉर्डनेस, मेरे कंट्रोल में रहे। हम लोगों ने देखा था वो पाड़े के स्ट्रीट डॉग को पकड़ के ले आते हैं, उसको बोलते हैं तुम्हारा नाम टाइगर है, फिर उसके ऊपर लॉर्डलीनेस तो उसके ऊपर होता है ना, आजा टाइगर, आजा टाइगर, आजा सिट डाउन टाइगर, उसके ऊपर होता है। भोग ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेत साम, बोले ये भोग और ऐश्वर्य में फंसे हुए हैं, क्यों भाई, तया अपहृत चेसाम आच्छादित विवेक प्रज्ञानम, बोले इनका विवेक शक्ति जो है आच्छादित है, इनमें विवेक शक्ति नहीं है, ये सोच नहीं सकते मैं क्या कर रहा हूं, इसका फल क्या मिलेगा, ये फल क्या नित्य है कि अनित्य है, इतनी परिश्रम करके जो मैं स्वर्ग जाऊंगा कितने दिन रहूंगा, फिर वापस आना है, वेदर इट इज वर्थ और नॉट, इसको चिंता करो, बोले नहीं। अपहृत चेत साम, इनकी विवेक बुद्धि नहीं है। व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न भी दिए, व्यवसात्मिका बुद्धि एक शाखा बुद्धि, कर्मयोग इन्होंने नहीं पकड़ा, इनकी एक शाखा बुद्धि कभी नहीं बनती। जो इस प्रकार के विवेक बुद्धि से रहित हैं, उन काम परायण पुरुषों के लिए अब भगवान ये कहते हैं। 45वां नंबर श्लोक।
त्रैगुण्य विषया वेदाः,
त्रैगुण्य विषया वेदाः,
निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन,
निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन,
निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः,
निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः,
निर्योगक्षेमयात्मवान्,
निर्योगक्षेमयात्मवान्, त्रैगुण्य विषया वेदाः, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः,
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा गोल जो है स्वर्ग नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल स्वर्ग से भी ऊंचा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्रैगुण्य विषया वेदा, त्रैगुण्यम संसारो विषय प्रकाशयितव्यो येषाम, कि वेद में त्रैगुण्य विषय के अर्थात तीनों गुणों के कार्य रूप में यह सारा संसार है। ये सारा संसार किससे बना हुआ है? त्रिगुण से बना हुआ है। त्रिगुण कौन से हैं? सत्व रजस तमस। सत्व रजस तमस के मिश्रण से मेरा शरीर भी बना और सारा ब्रह्मांड भी बना। सारे ब्रह्मांड में कितने लोक हैं? 14 लोक हैं। वो भी किससे बने? त्रिगुण से बने होंगे। और उसके अंदर स्वर्ग भी एक लोक है, तीसरा लोक। तो कहते हैं ये तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ध्येय नहीं होना चाहिए। देखो यहां पर हम जो है वेदांत की बात नहीं कर रहे हैं, और हम जो भी कुछ करेंगे ना वो सब त्रिगुण के अंदर ही चलता रहेगा। इसी भूलोक में रहेंगे या उसके ऊपर जाएंगे, पितृलोक में जाएंगे या देवलोक में जाएंगे या स्वर्गलोक में जाएंगे, हम इसी में घूमते रहते हैं। इन तीन लोक में, भू भुआ स्व, इन तीन लोकों में हमारे आते जाते रहते हैं, कोई भी परमानेंट नहीं है। हमने देखा है गीता में, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तस्या, अधो गच्छति तामसा। जब हम 14वें अध्याय के अंदर सत्व रजस तमोगुण देख रहे थे तो वहां पर बताया कि अगर आप मरने के टाइम में आप अगर सत्वगुण में हो तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊर्ध्वम गच्छन्ति मतलब आप ऊपर वाले लोक में जाओगे, महाजना तपन सत्य लोक में जाओगे। भूर्भुवस्व तो कर्मकांड से जा सकते हैं ना, स्वर्ग जाना हो ज्योतिष होम कर लो, स्वर्ग चले जाओगे। मगर सत्वगुण प्रधान के समय में अगर मृत्यु हो तो बोलते हैं कि आप पहुंचोगे कहां? महाजन तप एंड सत्य, ऊपर के और चार लोग हैं वहां पहुंच जाओगे। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो राजसिक स्टेट में मरते हैं, मृत्यु के टाइम में आपका मन एजिटेटेड है, राजसिक है, ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ, ये करना बाकी रह गया वो नहीं हुआ, मध्य तिष्ठन्ति, अभी भी आप कर्म करना चाहते हो, बोले इसी लोक में फिर से वापस आ जाओगे राजसिक अगर रहोगे। और तमोगुण अगर रहा आप में, आप स्लीपी रहे, हीडलेस रहे, आलसी रहे, जघन्य लोक, नीचे वाले लोक में जाओगे, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ऐसे लोक में चले जाओगे। तो कर्मकांडी लोग किसमें फंसे रहते हैं? ये तीन के अंदर फंसे रहते हैं, भू भुह स्व, स्वर्ग उनका हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये तीन के अंदर ही ये फंसे रहते हैं, इसलिए ये लोग केवल त्रिगुण की बात करते हैं। देखो कर्मकांडी जो भी है ना बराबर संसार में रहेगा। संसार किसको कहते हैं? संसरती इति संसार, जो हरदम सरकता रहता है, हटता रहता है, बराबर बदलता रहता है, उसको हम संसार कहते हैं। तो कर्मकांड वालों का क्या हाल है? वो लोग कर्ता जो है वो भी संसारी है, कर्म कांड का करने वाला जो करता है वो भी संसारी है, क्योंकि वो संसार की चीज मांगता है। उसकी इच्छा क्या है? इच्छा भी संसारी है। उसकी इच्छा, परम इच्छा कहां तक है? स्वर्ग। स्वर्ग भी इसी संसार के अंदर है। उसकी इच्छा का फल क्या है? फल भी संसार है। देखो, स्वर्ग भी इसी के अंदर पड़ गया ना, 14 लोक के अंदर आ गया। चाहता भी वो मैक्सिमम स्वर्ग है, वो भी उसी के अंदर आ गया। और ये सारा संसार है कैसा? बोलो, त्रिगुणात्मा का है, तीन गुणों से बना हुआ है सब कुछ। मगर आत्मा असंसारी है, आत्मा असंसारी है, बाकी चीजें सब संसारी हैं। कर्म कांड करता हुआ व्यक्ति कभी भी संसार के बाहर नहीं जा सकता। कर्म कांड करके कोई व्यक्ति आत्मा को नहीं पा सकता। कर्म कांड का दूसरा फल मिलता है, दूसरा फल क्या है उसके अंदर? आपका मन की शुद्धि होती है, मगर बहुत समय लगेगा वो। अब भगवान कहते हैं उसको, अर्जुन को, निस्त्रय गुण्य भवार्जुन। भवार्जुन, जैसे कोई विशेष बात कहनी होती है ना, तो भगवान जो अर्जुन का नाम लेते हैं। जैसे किसी को कुछ कहना हो उसका नाम पुकारो, पारुल जी, पारुल जी का ध्यान चुट पर आ जाएगा। नहीं, अर्जुन, अर्जुन का चमकौर, क्या बात, क्यों कुछ कहने जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? निस्त्रय गुण्य भवार्जुन, तुम जो है निष्काम बनो, निष्काम भव। निस्त्रय गुण का यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं निष्कामो भव इत्यर्थ, कि तुम निष्काम हो जाओ। त्रय गुण की चीजों की कामना नहीं करो, 14 लोक में घूमने का ये कामना नहीं करो, क्योंकि सारी चीजें सत्व रजस तमस से बनी हुई है, सारी की सारी चीजें पेरिशेबल है, नाशवान है। बोलते हैं कि तुम उसकी कामना नहीं करो। देखो, त्रैगुण्य जो है ना वो अपरा विद्या कहते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम जो है अपरा विद्या छोड़ दो, तुम अधिकारी हो परा विद्या की, आत्मविद्या के अधिकारी हो, तुम क्यों इस कर्मकांड में फंसने जा रहे हो, मत करो। अर्जुन के थ्रू हम सबको भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी सारी कामनाएं छोड़ो। किस चीज की? स्वर्ग की कामना, क्योंकि स्वर्ग जाके वापस आना है, वहां परमानेंट वीजा नहीं है, वहां जितना पुण्य है बस उतने दिन तक आप रहेंगे, वापस आना है, तो क्यों इतना तकलीफ करते हो? भगवान चाहते हैं कि अर्जुन साकाम कर्म ना करे। साकाम कर्म हम ये करेंगे ये फल मिलेगा, वो कहते हैं साकाम कर्म ना करे, वो निष्काम हो जाए, निष्काम कर्म करे। निष्काम कर्म करते करते आपका मन शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा तो आप ज्ञान के अधिकारी बन जाओगे, ज्ञान के अधिकारी बन जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए भगवान की इच्छा है कि हम सब जो है साकाम कर्म नहीं करें, निष्काम कर्म करें। निष्काम कर्म क्या है? जो कर्म आप करते हो वही करना है। उसमें क्या फिट करना है? सॉफ्टवेयर भगवान के लिए, भगवान के सुख के लिए, भगवान के हैप्पीनेस के लिए हमको करना है बस। हम रसोई भी बनाएंगे, हम ये सोचेंगे ये आज हम खाना बना रहे हैं, ये खाना अगर हम भगवान को देंगे भगवान खुश होंगे कि नहीं। तब आपका खाना कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा। देखो, केवल वो थोड़ा सा फिट करना। अभी हम काम कर रहे हैं ऑफिस का, तो बीच बीच में हम घर में भी बात कर लेते हैं, भगवान उससे खुश होंगे? नहीं, ऑफिस के टाइम में आप घर में क्यों बात करते हो? भगवान नहीं खुश होंगे। तब आप जो है अच्छा काम करोगे। ठीक है, तो एक जगह ये भी लिखा हुआ है, अयम आत्मा अयम लोक किम प्रजा करिष्यामी। मेरा संसार आत्मा है, मैं तो आत्मा को जानना चाहता हूं, मैं बाल बच्चों को लेकर क्या करूंगा, प्रजा को लेके मैं क्या करूंगा? मेरे को तो आत्मा जानना है, मेरे को उस लोक को जानना जहां आत्मा है। मैं बाल बच्चों को, प्रजा को लेके क्या करूंगा? क्या काम है मेरे को प्रजा से? अर्जुन का मतलब है वाइट, सफेद, प्योर, शुद्ध। देखो, इसके साथ में ये निस्त्रय गुण्य जो है बैठता है, अर्जुन का मतलब जो है सफेद, जो शुद्ध हो, वो नैस्त्रिक गुण के साथ बैठ। अच्छा अब हम कैसे निष्काम बने? भगवान ने तो कह दिया अर्जुन निस्त्रैगुण्य भवा, रास्ता बताओ। भगवान रास्ता बताते हैं, बोले चार काम करने हैं आपको। बोले निर्द्वंद भव, नित्य सत्वस्थ भव, निर्योग क्षेम भव, आत्मवान भव। देखो दूसरी लाइन के अंदर में ये सब आपको शब्द मिलेंगे, निर्द्वंदो, नित्य सत्वस्थ, निर्योग क्षेम, आत्मवान। ये साधना है, एक एक स्टेप एक के बाद एक आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने ऐसे लिख दिया है, एक के बाद एक आएगा। पहले क्या, निर्द्वंद भव। बोले निर्द्वंद भव का मतलब क्या, विगत राग द्वेष भव। द्वंद माने द्वैत, जब तक आपके पास में राग और द्वेष है आपके पास में वो द्वंद है, आप राग और द्वेष के हिसाब से काम करते ही जाओगे। आपको राग और द्वेष से विमुक्त होना है। यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं सुख दुख हेतु सर्प प्रतिपक्षो पदार्थो द्वंद शब्द वाच्यो ततो निर्गतो निर्द्वंदो भव। हमको जो है इस राग और द्वेष से निकल पड़ना है। अगर हम द्वंद से प्रभावित ना हो तो हमारी यात्रा ठीक चलती रहेगी। द्वंद से प्रभावित ना हो, द्वंद कौन सा? हम अभी पेयर ऑफ अपोजिट नहीं बात कर रहे हैं, हम यहां द्वंद पर बात कर रहे हैं जहां पर राग और द्वेष, ये द्वंद की बात हम कर रहे हैं। आपने 15 चैप्टर में भी देखा है ना, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंदई विमुक्ता सुख दुख संगई द्वंदई विमुक्ता, ये क्वालिफिकेशन है। द्वंदई विमुक्ता, राग और द्वेष के आपको ऊपर जाना है। और हमने इसके आगे भी 38वें श्लोक में देखा था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवाप्सि। अगर हम इस द्वंद्वों के अंदर अब हम सम रहे हैं, सुख दुख में, मान अपमान के अंदर, शीतोष्ण के अंदर में, तब जो है ठीक होगा। देखो राग क्या है, मेरे को ठंड अच्छी लगती है, जहां गर्मी आई हम ठंड में चले गए, आगे नहीं बोलेंगे हम। किसी को गर्मी पसंद है, जहां शिकागो में ठंडाई बोला गर्म देश चलो। किसी को बरसात पसंद है, बरसात यहां खत्म हुई चोरापुंजी में जो है बरसात होती रही, चलो हमको बरसात में वहां जाना है। ये है राग और द्वेष, इन राग और द्वेष के हमको ऊपर चलना है। तो कैसे द्वंद्व से मुक्त हो? नित्य सत्वस्थ भव अर्जुन, सत्वस्थ, नित्य सत्व में रहो। स्थ मतलब क्या, आप अभी सोफास्थ हैं, भूमिस्थ हैं, चेयरस्थ हैं, आप चेयर में बैठे हो, सोफा पर बैठे हो। भगवान कहते हैं तुम नित्य सत्व में रहो, बराबर सत्य गुण के अंदर में रहो। क्यों, इससे क्या होगा? बोले जब सत्य गुण बढ़ेगा तो इससे कामना कम होगी। सत्य गुण जब भी आएगा ना, रजस गया तमस गया, देखो साधना क्या है, जो तमोगुण को पहले रजोगुण में आना है। जो आदमी आलसी है उसको पहले तमोगुण में लाना है, तमोगुण के बाद में उसको साकाम कर्म देना है, साकाम कर्म करते करते जब मिलियन डॉलर हो जाएगा फिर बोलेगा अभी भी दुखी हम, तब उसको बोलना होगा निष्काम करो, तब वो निष्काम कर्म करना शुरू करेगा, फिर उसका मन शांत होगा, शुद्ध होगा, फिर वो सत्वगुण के अंदर आएगा। जब सत्वगुण में आता है तो आपके अंदर फिर जिज्ञासा आती कि मैं कौन हूं, मेरा काम बस इतना ही है क्या, खाओ पियो मौज करो, बस इसी के लिए जन्म हुआ है, सारा जीवन अपने बच्चों को पालते ही रह गए, पैसे इकट्ठे करते रह गए, क्या यही था इसीलिए जीवन हुआ था? नहीं, फिर आपके मन में जिज्ञासा आएगी कि मैं कौन हूं। जब ये जिज्ञासा आएगी तो फिर आपकी साधना शुरू होगी। तो तमस के चिन्ह क्या है? बोले तमस के चिन्ह है आलस, निद्रा, प्रमाद। प्रमाद मतलब केयरलेस, हीडलेस, ये सब तमोगुण है। रजोगुण क्या है? बोले काम, क्रोध, लोभ, ये सब रजोगुण है। और सत्वगुण में क्या होता है? बोलते हैं तृप्ति प्रसाद और परमात्म निष्ठा होती है तृप्ति। हम अब और हमको इतना नहीं चाहिए, संसार से इतना लेना था ले दिया, तृप्त हम। अब हमको क्या चाहिए? परमात्म निष्ठा चाहिए। ये सत्वगुण है। अच्छा, कैसे सत्वगुण को बढ़ाए? नेक्स्ट क्वेश्चन इमीजिएटली आ गया ना, निर्द्वंद कैसे बने? बोले सत्वगुण लाओ। सत्वगुण कैसे बढ़ेगा? बोलते हैं निर्योग क्षेम भव। तीसरा वर्ड आ गया। देखो सब एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के अंदर बने हुए हैं, ख्याल करो इसको अच्छी तरह से। भगवान ने ऐसे नहीं बैठा दिया शब्दों को। निर्योग क्षेम भव, योग क्या है? तो यहां कहते हैं अनुपातस्य उपादानम योग उपातस्य रक्षणम क्षेम। अप्राप्त की प्राप्ति योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा सेम है। तो भगवान कहते हैं जब तक आपको योग क्षेम की भावना है तब तक आप रजो और गुण तमोगुण के अंदर हैं। योग और चाहिए और चाहिए और चाहिए तो क्या होगा? आप राजसिक हो जाओगे। और जो है उसको संभाल के रखना है, इसको कैसा रक्षण करें कैसे संभालें, आप रजोगुण हो जाओगे। जैसे हमारे इंडिया के अंदर LIC का मोटो क्या है? योग अक्षेम बहाम में हम। वो कहते हैं आप हमको प्रीमियम देते रहो। कुछ दुर्घटना घट जाएगी फिर हम आपका योग क्षेम देते रहेंगे, सारा जीवन नहीं देंगे। आपकी पॉलिसी के जितनी अमाउंट है बस उतना तक देंगे, सारा जीवन का नहीं देंगे। सारा जीवन का योग क्षेम एक आदमी दे सकता है, भगवान बताएंगे कौन दे सकता है। योग क्षेम बहाम्यम। तो योग क्षेम की चिंता मत करो, सत्वगुण पर चलो। कोई ना कोई आके आपको योग क्षेम करके चला जाएगा मगर आप सत्वगुण पर रहो, ये होगा। तो साधु का स्वभाव बताते हैं, साधु गांठ न बांधिए उधर समाना ले, आगे पीछे हरी खड़े, जब मांगे तब दे लो। ये साधु का स्वभाव है। साधु कहते तुम गठरी मत बांधो। देखो पशु पक्षी कभी दूसरे दिन के लिए खाना नहीं इकट्ठा करते हैं, कभी नहीं रखते। साधु भी गठरी नहीं बांधता है। कितना चाहिए? उधर समाना ले, आज की भूख के लिए जितना चाहिए दे दो भाई, भिक्षा खा लो उधर समाना, कल फिर देखा जाएगा। उसके पीछे क्या उसका साइंस है? आगे पीछे हरी खड़े, जब मांगे तब दे। आगे पीछे हरी है, जब मांगो तब दे। हमारे पीछे भी आगे पीछे हरी है। जो भिक्षा लेके आते हैं कल आएंगे, एक ये लेके आना, आगे पीछे हरी खड़े, जब मांगे तब दे, तब मिल जाता है। एकदम प्रैक्टिकल है वैसे ये, मगर कठिन बहुत है। हमको विश्वास नहीं होता, हम कल की चिंता करते रहते हैं, कल क्या होगा। देखो तपोवन जी महाराज कैलाश यात्रा 3 बार की है पैदल, मगर कभी साथ में कुछ लेके नहीं गए। कल क्या होगा, रास्ते में क्या खाएंगे नहीं खाएंगे कुछ नहीं। हम यात्रा करते हैं तो कितनी व्यवस्था करते हैं, सवेरे क्या खाएंगे, ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, प्लेन लेट हो जाएगा तो एयरपोर्ट पे बैठ के क्या खाएंगे, सब व्यवस्था करके जाते हैं। कितना सोचते हैं हम लोग, थेपला चाहिए। अगर आप योग क्षेम में फंस गए ना तो श्रेय मार्ग पर चलना मुश्किल है। आप अगर ये सोचते रह गए कि योग क्षेम ये कौन देगा, कहाँ देगा, कैसे होगा, क्या होगा, फिर आपको श्रेय मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। शंकराचार्य जी भज गोविंद कहते हैं काते कांता धनगत चिंता बातुल किमत नास्तिनियंता। क्यों चिंता करते हो तुम पागल? यहां कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई नियंता नहीं है, कोई रूलर नहीं है, कोई गवर्नर नहीं है। भगवान विष्णु है ना भाई, उनका काम है, उनके 4 हाथ हैं, सबको खाना पहुंचाना है, ये उनकी ड्यूटी है। आप जहां भी रहो आपको खाना मिलेगा। अब प्रश्न होता है कि हम निर्योग क्षेम कैसे बने, द्वंद से कैसे मुक्त हो, सत्वगुण लाओ। सत्वगुण कैसे आएगा? निर्योग क्षेम बाबा। निर्योग क्षेम कैसे बने? आत्मान बाबा। भगवान ब्लेस कर रहे हैं, आत्मवान भव, तुम आत्मवान बन जाओ। धनवान कौन है? जिसके पास धन है। बलवान कौन है? जिसके पास बल है। भगवान कहते आत्मवान बन जाओ, मैं तुमको ब्लेस करता हूं, तुम इस रास्ते पर चलो, आत्मा तुम्हारा गोल होना चाहिए, आत्मवान भव। अच्छा, भगवान कहते हैं कि कामात्मना मत बनो। आगे एक था ना, हमने रिचुअल के अंदर में देखा था, कामात्मना, उनकी बहुत कामनाएं हैं। भगवान कहते हैं कामात्मना मत बनो, तुम आत्मवान बनो। अच्छा, आत्मा क्या मिलेगा? आत्मवान कहते तो वो भगवान, मगर मिलेगा क्या? तो भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परियुपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योग क्षेम महाम्यम। अगर तुम हमारी चिंता करते रहोगे सारा जीवन, हमारा नाम स्मरण करते रहोगे, हमसे जुड़ने का प्रयास हरदम करते रहोगे, तो इसे रिटर्न प्रॉमिस क्या, योग अक्षेम बहामी अहम। हम जो है भगवान लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा योग, योग मतलब जो वस्तु तुम्हारे पास नहीं है वो हम देंगे, और जो है उसकी रक्षा करेंगे। देखो ये 100% सही है, ये मेरे जीवन में घटा है, इसलिए मैं कहता हूं कि 100% सही है ये योग। जो मेरे को दरकार होती है सब कुछ हाजिर होता है, और जो मेरा है वो कोई ना कोई रक्षण कर रहा है, प्रोटेक्ट हो रहा है, मेरे को चिंता नहीं है। ये एकदम 100% जो है ये सत्य है। ठीक है, इसका दूसरा मीनिंग है, अगर हम अपने शरीर मन बुद्धि को आत्मा अगर मानते हैं, तो जो इसे अपने शासन में रखता है वो आत्मवान है। एक आत्मवान का मतलब हुआ कि आत्मा तुम्हारा गोल होना चाहिए, उसकी तरफ चलो। दूसरा, अगर हम अपने शरीर को आत्मा मानते हैं, तो ये शरीर आपके कंट्रोल में होना चाहिए। शरीर मन बुद्धि अगर आपके कंट्रोल में है, आपके नियंत्रण में है, आपके शासन में है, तो आप आत्मवान हो। देखो ये आत्मवान बनना, कंट्रोल में रखना बहुत डिफिकल्ट है। हम लोग सांदीपनी में पढ़ते थे, सवेरे से लेके रात तक केवल ब्रह्मन छोड़ के और कोई चिंता नहीं होती थी, ब्रह्मन ही ब्रह्मन चर्चा थी, फिर भी मन ब्रह्मन में नहीं होता था, कई बार बाहर भाग जाता था। इट्स डिफिकल्ट, मगर गृहस्थियों के लिए मन का ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट है, ये सहज नहीं है। अच्छा, अब यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं संपूर्ण वेदोक्त कर्मों के तो अनंत फल हैं। वेद में जितने भी कर्म लिखे हुए कर्मकांड बहुत से हैं, उनके अलग अलग फल हैं, स्वर्ग चाहिए, पुत्र चाहिए, कि हमको धन चाहिए, कि विद्या चाहिए, बहुत से कर्म लिखे हुए हैं, अनेक अनेक फल में। उन फलों को यदि कोई न चाहता हो, भगवान तो ये कहते हैं तुम निष्काम भव, मान लो हम उसको नहीं चाहते हैं, अगर इन फलों को कोई नहीं चाहता हो तो वह उन कर्मों का अनुष्ठान ईश्वर के लिए क्यों करे, क्यों करेंगे ईश्वर के लिए? फिर उसका उत्तर भगवान देते हैं,
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतो दके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतो दके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः।
यावानर्थ उदपाने, उदपाने मन उदकम पानम, उदकम पानम है पीने का पानी। यावानर्थ, यावान मन यावत परिमाण का यहां पर शंकराचार्य जी बोलते हैं कि स्नान पानादि आपको अगर पानी लेना हो, आपके गांव में कुआं हो, देखो उस टाइम में ऐसा नहीं था कि आपके घर में आपको वहां पर किचन में भी एक है, हॉट वाटर कोल्ड वाटर बाथरूम में भी है, सब जगह कल लगा हुआ, ऐसा नहीं था। आगे पहले तो स्ट्रीट के अंदर हुआ करता था, वहां जाके ले लो, उसके पहले गांव में एक कुआं होता था उसमें से जाके लो। कितना पानी लाओगे आप? जितनी आपको दरकार है उतना ही तो लाओगे। किसके लिए? पीने के लिए और स्नान के लिए। शंकराचार्य जी बोलते हैं उतना पानी आप लेके आते थे। यावन मतलब यावत परिमाणम, अर्थ प्रयोजन, जितना प्रयोजन है उतना आप पानी लेके आते थे कुएं से। अब कहते हैं सर्वतः सब जगह क्या हो गया, संप्लुतोदके, प्लुत का मतलब है बाढ़ आ गई, पानी इतना हो गया कि कुआं का पानी अब ओवरफ्लो करके आपके घर के दरवाजे के बाहर भी 2 फुट पानी है। अब आप कहोगे तो गंदा पानी है, आप ये समझ लो कि कुएं का पानी और ये पानी अब एक हो गया। अब आपको पानी चाहिए, आप कुआं खोजोगे जाके? नहीं खोजोगे ना, आप नहीं कुआं खोजोगे आप, क्योंकि सर्वत्र सब जगह पानी ही पानी है। तो आपको जितना प्रयोजन है उतना आप ले लोगे। अब इसके बाद कहते हैं तावन सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मणस्य विजानतः, ब्राह्मणस्य ब्राह्मण जिसको ज्ञान हो गया, जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, जिसको आत्म तत्व मिल गया, जो रियलाइज हो गया, विजानतः उसको विशेष ज्ञान है। क्या विशेष ज्ञान है? कि मैं ही आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। और उसको कैसे यह ज्ञान हुआ? क्योंकि उसकी व्यवसात्मिका बुद्धि थी, उसने कर्मयोग किया था, कर्मयोग के बाद में उसको ज्ञान मिला, ज्ञान के बाद में अब वो जानता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। बहुत अच्छा। तो उसने किया क्या? थोड़ा सा चेंज किया अपना फोकस को, उसने चेंज किया, इंस्टेड ऑफ अहंकार पूजा उसने ईश्वर पूजा की। साकाम कर्म में क्या है, किसकी पूजा करते हैं? अपनी ईगो की पूजा करते हैं। और कर्मयोग में किसकी पूजा है? भगवान की पूजा है। कर्म दोनों एक है, कर्म में फर्क नहीं हुआ। हम जो खाना बनाते हैं, अभी जो बनाते हैं, वो केवल अपने लिए बनाते हैं ऐसा सोचते हैं। वही खाना अगर हम ये सोच के करें कि हम भगवान के लिए बनाते, इतना ही करना और कुछ नहीं, खाना वही बनेगा, वही दाल, वही रोटी, वही सब्जी, एवरीथिंग, कोई चेंज नहीं। तो हमें केवल फोकस को चेंज करना है। फोकस अभी ईगो है, उस ईगो के बदले अभी भगवान को ले आना, बस इतना काम करना है। कहते हैं कि जो वेद को जानता है उसके लिए कर्म कांड जो है पौंड की तरह है। जो वेद को जानता है, जिसने ब्रह्म को जान लिया, उसके लिए अब वो पौंड जो है, पौंड का मतलब कर्मकांड, कर्मकांड पौंड की तरह है, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है अब। क्यों? क्योंकि अब तो चारों तरफ पानी है उसके पास, वो तो ब्रह्म आनंद के अंदर घूम रहा है। अब उसको कर्मकांड का स्वर्ग से क्या लेना देना है? कर्मकांड से पुत्र से उसको क्या लेना देना है? कर्मकांड से धन लेने का क्या लेना देना है? कर्मकांड से किसी शत्रु के विनाश को करने का क्या फायदा उसको? वो तो परमानंद में है। तो ब्राह्मणस्य विजानतः, जिसको ब्रह्म मिल गया, जिसको आत्मज्ञान हो गया, अब उसको वो छोटे छोटे कर्मफल को लेके क्या करना है? महात्मा लोग समझाते हैं, जैसे मान लीजिए 1 रुपए के अंदर जो आनंद है, 1 रुपए की वैल्यू के हिसाब से उसमें आनंद है, मगर आपको आपके पास में अगर 1000 रुपया है, 1000 का नोट है, तो उस 1000 के नोट में 1 रुपए का आनंद उसके भीतर है, बल्कि आपके पास आनंद 1000 गुना है। जब आपको ब्रह्म का आनंद मिल जाएगा तो उसके अंदर सारे विषय आनंद उसके अंदर है, ब्रह्म के आनंद के अंदर सारे विषयों का आनंद घुसा हुआ है उसके अंदर में। एवं गुरु जी कहते हैं कि जिसे ब्रह्मानंद मिल गया उसको फिर सिनेमानंद नहीं चाहिए, दुकानानंद नहीं चाहिए, फिर वो सिनेमा नहीं जाएगा क्योंकि तो ब्रह्मानंद में है। जिसे नहीं मिला वो दुकान मकान पकवान इन सब में जाएगा, उसको यह सब चाहिए। हम शास्त्रों में उपनिषद में लिखा है कि उस ब्रह्मानंद की एक बूंद का एक फ्रैक्शन ब्रह्मा जी से लेकर पिपीलिका तक पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर खुश रहते हैं। क्या समझा? उस ब्रह्मानंद की एक बूंद के एक फ्रैक्शन से ब्रह्मा से लेकर पिपीलिका तक पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में आनंद से रहते हैं, उतना ही काफी है इनके लिए। और जिसको ब्रह्म मिल गया वो उस ब्रह्मानंद सागर के अंदर तैर रहा है। तो ये फायदा है उस वहां पर। देखो, जिसको थोड़ा सा भी थोड़ा सा आनंद चाहिए होता है ना, तो पहले हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा पुण्य कर दो। हम जानते हैं आदमी बहुत पाप करता है तो उसको पहले क्या कहते हैं, पुण्य करो, थोड़ा पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो। ब्राह्मण के पास जाएंगे, बोलेंगे अभी आपका शनि चल रहा है, अभी ये चल रहा है, राहु है, ये है, वो है, थोड़ा कर्मकांड करो, थोड़ा सा यज्ञ कर लो, थोड़ी सी ये पूजा कर लो, ये कर लो, कर लो। तो आपसे कर्मकांड कराते जाएंगे, आपको फल मिलता गया। हर कर्मकांड के बाद में आपको फल मिलता गया, आप और करते गए, और करते गए, और करते गए, करते 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 एक समय आएगा कि आप जो है बोलो कि क्या हुआ ये सर, क्या कर रहे हैं, इतने कर्मकांड करके हमने इतना मिलियन ट्रिलियन डॉलर इकट्ठा कर लिया, ये तभी हम खुशी नहीं है, खा भी नहीं सकते, अब क्या करेंगे पैसे लेके, सारा जीवन हमारा निकल गया। तब फिर आएगा वैराग्य। देखो कई आदमी जो है ना, दूसरों की बात सुन के सावधान हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आई विल एक्सपीरियंस माइसेल्फ, आई विल नॉट बिलीव अदर्स, हम दूसरे की बात क्यों सुनेंगे, भगवान कहते हैं तो मान लें, हम तो जुड़वा करके देखें, कर लो खुद तजर्बा करके देख लो क्या होता है। जीवन के अंत काल में जब देखोगे अपनी बैलेंस शीट पीछे में क्या किया हमने सारा जीवन के अंदर, तब वो चिट्ठा दिखाई देगा, सारा जीवन के अंदर हमने ये किया, कुछ भी नहीं हुआ। एक इसका दूसरा मीनिंग है कि जिसको ब्रह्मानंद मिल गया, अब वो कर्म कांड करके वो नीचे के तीन लोक में क्यों जाए, ब्रह्म का आनंद जो है वो 14 लोकों के पार करके है, ऐसा व्यक्ति फिर क्यों कर्म कांड करे। ऐसे व्यक्ति के लिए ना कोई लौकिक कर्म है ना कोई वैदिक कर्म है। जिसको ब्रह्मानंद मिल गया उसके लिए कोई लौकिक कर्म नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है उसके लिए इस दुनिया में, और कोई वैदिक कर्म नहीं है कि आपको रोज पूजा करनी है, आपको मंदिर जाना है, आप ऐसा करो, आपने संध्या वंदन किया क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है उसको। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो है कल से अपने पूजा संध्या बंधन सब बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है, आप अभी उसके अधिकारी नहीं हुए हो। ब्रह्मानंद प्राप्त करने के बाद करना, फिर बंद करना, उसके पहले नहीं है। महात्मा लोग एग्जाम्पल देते हैं कि आप देखो मान लो आपको ब्रह्मानंद मिल गया तो आपको नीचे लोगों के जाने के लिए कोई कर्मकांड करोगे नहीं। सिंपल एग्जाम्पल, आपको अगर अमेरिका नहीं जाना है तो अमेरिका वीसा रूल आप पढ़ोगे क्या, नहीं पढ़ोगे, हमको जाने नहीं है, हम क्यों पढ़े, क्यों माता बच्ची करें, हमको हमको पढ़ने क्या दरकार है। अगर हमको स्वर्ग नहीं जाना है, हमको पितृलोक नहीं जाना है, देवलोक नहीं जाना है, तो स्वर्ग लोक पितृलोक देवलोक जाने के जो साधन है, जो रिचुअल है, जो कर्मकांड है, वो मैं क्यों करूं, क्यों पढ़ूं, हमको कोई दरकार नहीं है पढ़ने की। मगर वेदांत को पढ़ने वाले सारी दुनिया में गुने उंगली पर भी गिन के आप खत्म कर सकते हो। 99.9% आदमी सब के सब कामी हैं। कामी मतलब वो इस दुनिया की चीजें मांगते हैं। इस दुनिया की चीजें मतलब कॉलेज में एडमिशन मांगते हैं। देखो जरा इसको गलत नहीं समझना, डिफरेंट प्रोफेशन के लिए हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, अनगिनत यूनिवर्सिटीज हैं। कितने उसके अंदर कोर्सेस हैं, अनगिनत कोर्सेस हैं, है ना। अच्छा वहां पर क्या ब्रह्मगान का डिपार्टमेंट है कोई किसी यूनिवर्सिटी में? नहीं है। अच्छा सारे आदमी अगर ये ब्रह्मानंद की तरफ आ जाएं तो ये यूनिवर्सिटी सारी बंद करके एक डिपार्टमेंट खोलना होगा। कौन सा? ब्रह्म ज्ञान का डिपार्टमेंट खोलना होगा। हमारे चिन्मय मिशन के अंदर ब्रह्म ज्ञान का डिपार्टमेंट है, वहां सीटें ज्यादा हैं, स्टूडेंट कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारी दुनिया कर्मकांड में लगी हुई है। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, घट रहा है, बहुत खूब। तो लोग जो है इस छोटे छोटे आनंद को ही चाहते हैं। भगवान ने प्रशंसा की, देखो एक ब्रह्मानंद भी है, इसको भी ले लो तुम, ठीक है। अब भगवान कहते हैं कि देखो एक तो हमने तुमको बताया कि एक आदमी होते हैं कामात्मना, जिनको कामना है, जो रिचुअल्स में फंसे हुए हैं, और दूसरे हैं ब्राह्मण से बिजानता, जो रियलाइज्ड है, ज्ञानी जो हैं। अर्जुन किस में है? बीच में है। उसके लिए क्या करना है, हम लोग के लिए क्या है? हम लोग तो अर्जुन है, हम ब्रह्मज्ञानी भी नहीं है, और हम रिचुअल्स में भी अब इतना पढ़ने के बाद और रिचुअल नहीं करेंगे हम। अब तक जो किए किए, अब जो है रिचुअल कर्मकांड नहीं करेंगे, क्योंकि कर्मकांड से हमें क्या मिलेगा, संसार की चीज मिलेगी। आप क्या मांगते हो कर्मकांड करके, एक लोक ही मांग लोगे, स्वर्ग में जाना है और क्या, फिर वापस भी आना है, तो आप नहीं मांगोगे। तो ये बीच वालों के लिए फिर क्या है? तो नीच बीच वालों के लिए भगवान ने बताया कि निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निस्त्रैगुण्य बन जाओ। कैसे बनना है? निर्द्वंद, नित्य सत्वस्थ, निर्योग क्षेम और आत्मवान, ये चार स्टेप कंप्लीट करके आओ। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद में ये आदमी कैसे कर्म करेगा, अब भगवान ये बताते हैं। 47वां श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, हम थोड़ा सा आज इसको देखते हैं, पूरा तो नहीं हो पाएगा।
कर्मण्येवाधिकारस्ते,
कर्मण्येवाधिकारस्ते,
मा फलेषु कदाचन,
मा फलेषु कदाचन,
मा कर्म फल हेतुर्भूः,
मा कर्म फल हेतुर्भूः,
मा ते संगोस्त्व कर्मणि,
मा ते संगोस्त्व कर्मणि, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूः, माते
संगो। देखो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, लोग जो है इसका एक पाद सबको याद है, पहला वाला पाद सबको याद है, कुछ कुछ लोगों को उसके बाद वाला सेकंड पाद याद है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बस उसके बाद वाला क्या लिखा बोले एक बहुतों को नहीं मालूम है, सेकंड लाइन नहीं मालूम है। अच्छा ये किसके लिए श्लोक है याद रखना होगा,
अर्जुन के लिए,
जो कामात्मना नहीं है और जो ब्रह्मज्ञानी नहीं हुए हैं, जो साधना करना चाहते हैं उनके लिए ये श्लोक है। बहुत खूब, भगवान कहते हैं कर्मणि एव ते अधिकार है, ते का मतलब क्या है यहां पर, कर्मणि एव अधिकार है न ज्ञान निष्ठायम ते, तब तुम्हारा ज्ञान का अधिकार नहीं है अर्जुन, एकदम साफ कह दिया। क्यों नहीं अधिकार है, तुमको तो ज्ञान दिया था ना, पूरा आत्मज्ञान तुमको दे दिया, 11वें नंबर श्लोक से लेके 30 नंबर श्लोक तक पूरा आत्मज्ञान था, पूरा ज्ञान तुमको दिया, तुमने समझा, मगर वो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, तुम्हारा अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ। परोक्ष ज्ञान क्या होता है, अपरोक्ष ज्ञान क्या होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब प्रति अक्ष, अक्ष मतलब आंख, आंख के सामने है प्रति अक्ष, प्रत्यक्ष ये मेरे सामने घट रहा है, परोक्ष पर अक्ष दूसरे किसी ने देखा, मैंने नहीं देखा, मैंने ताजमहल नहीं देखा, कोई ताजमहल देख के आके मेरे को बता रहा है तो वो क्या हुआ परोक्ष ज्ञान, वो मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, किसी के थ्रू मेरे को ज्ञान हो रहा है तो वो हो गया परोक्ष ज्ञान। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुमको हमने जो ज्ञान दिया है वो परोक्ष ज्ञान हुआ, तुम्हारा अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, तुमने अभी अनुभव नहीं किया, इसलिए तुम ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। क्यों नहीं ज्ञान हुआ, बोले ज्ञान इसलिए नहीं हुआ कि उसमें कोई प्रतिबंध है, उसमें कोई ऑब्स्टेकल है, उसमें कोई शॉर्टकमिंग है, कोई चीज उसके अंदर बाधा दे रही है, उस बाधा को तुमको हटाना है, वो बाधा हटेगी तब वो ज्ञान घटेगा। और बाधा क्या थी, वासना, हमारे BMI चार्ट के अंदर जो वासना है वो बाधा है, इसके कारण उसको ज्ञान नहीं हुआ। तो कहते हैं कर्म तुमको करना होगा, कर्मण्येवाधिकार से कर्म तुमको करना होगा, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म तुमको करने होंगे, तुम बिना कर्म के रह नहीं सकते, कर्म तुमको करना होगा। तो ये अर्जुन को निमित्त करके भगवान हमको कह रहे हैं, तो इसका जनरल मीनिंग क्या है उसको हम देख लेते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, अभी हम आज ये चर्चा नहीं करेंगे कौन से कर्म में अधिकार है, कई किस्म के कर्म है, भगवान कहते हैं तुम्हारा कर्म में अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, मगर फल में अधिकार नहीं है, फल में अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतुर भू, केवल काम में कर्म के लिए, कर्म फल पाने के लिए कर्म मत करो। ये क्या कह रहे हो भगवान, हम तो यही इसी के लिए करते हैं, फल मिलेगा इसीलिए तो कर्म करते हैं। आप बोलते हो कि कर्म फल का हेतु नहीं बनाओ, कर्म फल को रख के सामने, कर्म फल के लिए हम कर्म करेंगे, ऐसा नहीं करो। अच्छा तो फिर कर्म ही नहीं करेंगे, अगर कर्म फल ही नहीं मिलेगा कर्म नहीं करेंगे। साथ साथ भगवान कहते हैं माते संग अस्ति अकर्मणि, अकर्म के साथ में संग मत कर लो, ऐसा इसका मतलब नहीं निकाल लेना कि कर्म फल ही नहीं मिलेगा तो इसलिए फिर कर्म क्यों करें। हम लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं ना, सीधा हम लोग अर्थ निकालेंगे फिर क्यों कर्म करें, कर्म ही नहीं करते चलो। तो भगवान कहते नहीं ऐसा नहीं सोचना। देखो इस श्लोक को जो है ना, कुछ लोग कहते हैं, कम्युनिस्ट लोग ऐसा कहते हैं कि ये पूंजीवाद को समर्थ करता है, कैपिटलिस्ट लोगों को समर्थ करता है ये श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कोई अगर वर्कर आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते तुम्हारा केवल कर्म अधिकार है, कर्म करो, फल नहीं, हम जो देते हैं उतना ले लो, उससे ज्यादा नहीं मांगो। तो एक कर्मचारी अपने मालिक के पास में आया, बाबू आप क्या 25 साल से काम कर रहे हैं, अब थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दो, तुमने मांगा नहीं, इस वास्ते 25 साल तक तुम नौकरी करते थे, आज मांग रहे हो, जाओ। गीता नहीं पढ़ी है? कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, हम जो देंगे वो ले लो बस। ये सब जो है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। ये जो है शिल्पपति पर भी काम करता है, हर व्यक्ति के ऊपर में ये लागू होता है। हर आदमी जो साधक है उसको ये फॉलो करना है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका हम डिटेल अच्छी तरह से अगली क्लास में देखेंगे। ओ
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुवे नमः। हरि
Should you take a photo today or on the next week?
Oh, yeah.
You're all dressed up? Huh? Obviously.
No, I'm not dressed. But whatever.
So, I thought we'll take one today and another next week. Next week, are you doing it? Next week class, if you do it, two pictures which will be good, you will give it. And if you can wait for some more time, then we can wait for Ashok Ji. Yeah.
What is the deadline for the...
दो तीन पिक्चर लेते हैं जो बेटर आएगी, जहाँ संख्या ज्यादा
है हर क्लास में फोटो लेते जाओ, जिसमें ज्यादा लोग।